हट के।
कहते हैं मैथमेटिक्स से खुदा ताला की हस्ती का किस तरह सबूत मिलता है। बड़ा दिलचस्प सवाल है कि मैथमेटिक्स हिसाब की रूप से खुदा ताला की हस्ती किस तरह साबित होती है। एक मैं आपको दिलचस्प खबर दूं कि हिसाब की एप्लीकेशन से अभी हाल ही में दुनिया के बाद चोटी के साइंसदानों ने खुदा ताला की हस्ती को कथित तौर पर साबित किया है, और वही हिसाब है जो मैंने पहले बयान किया था, लार्ज नंबर का हिसाब। उसके कुछ कवानीन हैं जो इत्तफाकन हो ही नहीं सकते। साइंसदानों ने, जिनमें एक मिस्टर हॉयल हैं अमेरिका के और एक सिंगा हैं, मिलकर एक किताब लिखी है जिसमें हिसाब की एप्लीकेशन बाद वाकयात पर करके ये सबूत दिया है कि कोई हिसाबदान इसको उल्टा के दिखा दे, नहीं बदल सकते तुम इस हकीकत को कि लाजमन खुदा है, मानना पड़ेगा। और इससे पहले स्पाइनोजा वो फिलोसोफर था जिसने दुनिया के मालूम आदमियों में सबसे पहले हिसाबी रूह से खुदा ताला की हस्ती को साबित किया था। आजकल जो किताब शाया हुई है, वो किताब ये कहती है कि जब जिंदगी का आगाज हुआ तो साइंसदान बायोलॉजिस्ट ये कह देते हैं कि पहला डीएनए, जो पहला जिंदगी का बेसिक सेल या ईंट है, वो इत्तेफाकन इसलिए बन गया कि ऑर्गेनिक मैटर पैदा हो गई थी, इत्तेफाकन प्रोटीन्स बन गई, इत्तेफाकन उनकी अरेंजमेंट हो गई। वो कहते हैं हमने कैलकुलेशंस की हैं कि 20 अज्जा ऐसे हैं जिनमें से हर एक के लिए एक ऐसी कई कई सौ, मैं बताता हूं, हाँ, दो हजार, 20 ऐसे हैं अज्जा जिंदगी के पहले जर्रे के जिनके लिए दो हजार आगे सब डिवीजन हैं, और उन दो हजार सब डिवीजन के नतीजे में भी जिंदगी पैदा नहीं हो सकती थी जब तक एक दो तीन चार की तरह वो मुसलसल अरेंज ना हो सारी, यानी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 2000 तक वो अरेंज हो, और फिर दूसरी भी 2000 तक इसी तरतीब से अरेंज हो, एक भी गलती ना हो, और तीसरी भी और चौथी और 20 तक, और फिर वो 20 आपस में भी अरेंज्ड हो एक खास जगह पर, तब जिंदगी पैदा होती है। कहते हैं हमने हिसाब लगाया तो पता लगा 10^40,000 -40,000, ये फार्मूला बनता है हिसाब की रूह से, जिसको अदना सा भी हिसाबदान हंस कर रद्द कर देगा कि पागलपन से ज्यादा नहीं हो सकता ये कहना कि ये इत्तफाकन वाकया हो गया। इसी चीज को एक और हिसाबी तरीके के ऊपर अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका में बायोलॉजिस्ट की, जिसमें जिंदगी के आगाज पर बहस हुई। उसमें एक साइंटिस्ट ने हिसाबी रूप से ये फार्मूला बना के तमाम साइंटिस्ट के सामने बयान किया, और कोई नहीं था जो उसका जवाब दे सके, उसको मुसलमान तस्लीम कर लिया गया। वो कहता है कि अगर जिंदगी की एवोल्यूशन में इत्तफाक के उनसर को माना जाए कि यह इत्तफाकी हादसात थे, तो इतने इत्तफाकी हादसात एक के बाद दूसरा मानना पड़ेगा कि इसकी बिल्कुल ये मिसाल बनती है। कहता है मैंने हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करके देख लिया, मिसाल ये बनेगी कि हो सकता है ए इत्तफाकन पहले फेंके आप 28 हरफ अल्फाबेट्स के, अंग्रेजी अल्फाबेट्स के यूं करके फेंक दें, मुट्ठी में लेके यूं फेंक दें। कहता मुमकिन है कि ए के बाद बी आए और बी के बाद सी आए, लेकिन यह मानना बहुत मुश्किल है कि ए से लेके 28 तक सारे उसी तरतीब से आ गए। कहता लेकिन यह तो इत्तफाक कोई चीज ही नहीं रखता माने उस इत्तफाक के मुकाबले पर जो मैं बयान करने लगा हूं। कहता जो हिसाब मैंने मैथमेटिक्स से मालूम किया वो ये था कि अगर कोई ये कहे कि हर दफा अल्फाबेट उठा के फेंके और हर दफा वो ऐसे लफ्जों में तब्दील हो जाए कि हर लफ्ज का एक माना हो, 28 अल्फाबेट अंग्रेजी के इस तरतीब से फेंके जाएं कि हर दफा उनमें हर लफ्ज का माना हो और हर लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ इस तरह तरतीब में आए कि एक फिक्रा भी बन जाए और हर फिक्रा मजबूत हो और उसके बाद एक और माना बयान कर रहा हो, और इस तरह एक किताब नहीं 25,000 सफे की किताब लिखी जाए और जो इंतहाई गहरे मानी पर मुश्तमिल हो। कहते हैं अगर किसी अकल का पट्टा इस बात को मान सकता है तो फिर इसको भी मान जाए कि ये सारी कायनात इत्तफाकन पैदा हो गई। اب بتائیے حسابی روح سے خدا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جس کے نزدیک نہیں ہوا وہ اس حساب کو کاٹ کے دکھائے. یہ وہ حسابات ہیں جو دنیا کی چوٹی کے سائنٹیفک رسالوں میں چھپے ہوئے موجود ہیں, اور دنیا کے ٹاپ کے میتھمیٹیشین ان کو توڑ نہیں سکے, ان کا رد نہیں پیش کر سکے. اسی وجہ سے ایک جو ریسنٹ کنسنسس ہوا امریکن سائنٹیفک امریکن میں, اس کا ذکر آیا ہے کہ اس سے پہلے سائنسدان شرمایا کرتے تھے خدا کا نام لیتے ہوئے, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر خدا کا نام لے لو گے تو تم دقیہ نوسی اور پرانے سمجھے جاؤ گے. لیکن سائنس ابھی ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے کہ ہم نے جو جائزہ لیا 25ویں صدی سائنسدان اب تک ایسے ہو چکے ہیں جو کھلم کھلا سائنس کے حوالے سے خدا کی بات کرنے لگ گئے, اور یہ رجحان ہے جو بڑھ رہا ہے. یہ دوسری بڑی عجیب بات ہے کہ دہریا ہونے کے بعد واپسی شروع ہو گئی اور یہ رجحان ہر قدم پہ آگے بڑھ رہا ہے, اور اس قسم کے فارمولے جو میں نے بیان کیے ہیں یہ منستہ شود پہ ابھر رہے ہیں. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان بے وجہ کے بہودہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی بجائے قرآن کی خدمت پر کمر باندھ لے اور ان مضامین کی تحقیق شروع کرے اور دیکھے کہ دنیا کس طرح حملے کر رہی ہے اور کس طرح اس کے جواب دینے چاہیے, تو اتنی وسیع زمین خدا کی پڑی ہوئی ہے خدمت اسلام کی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مسلمان ختم ہو جائیں گے لیکن خدمت اسلام کی وسیع سرزمین ختم نہیں ہو سکتی. بس قسمت ہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں, چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں, ایک دوسرے کے قتل, ایک دوسرے کے کفر, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کے معاملات میں الجھ گئے ہیں, اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے. حالانکہ یہ اسلام ہے جو غیر اب خدمت کر رہے ہیں. کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا پہلا حق نہیں تھا کہ علم کے میدانوں میں وہ نکلیں اور خدا کی ہستی کو ثابت کریں, بجائے اس کے کہ غیر قومیں اٹھیں اور وہ آ کر اب یہ نظریات پیش کر کے خدا کی ہستی کے دلائل پیش کریں؟